से प्रणाम है मेरी माता सचिन, आप सबके श्री चरणों में। रविवार का दिवस है, बहुत बच्चे आए हुए हैं, जहाँ जहाँ भी बच्चे बैठे हैं मेरा बहुत बहुत प्यार स्वीकार करें, धन्यवाद भी स्वीकार करें पधारने के लिए। पिछले सप्ताह से चर्चा सरलता पर चल रही है, यूं कहिए चर्चा बच्चों पर ही चल रही है। पिछले सप्ताह से बच्चों की सरलता बहुत प्रसिद्ध सरलता है, बहुत सरल होते हैं बच्चे। मैं अब रोऊं कि मेरे अंदर सरलता नहीं है, पछताऊं कि मेरे अंदर सरलता नहीं है तो क्या लाभ। बचपन में जो सरलता थी उसको खो दिया, उसको गंवा दिया, अब सरलता नहीं रही, कुटिलता आ गई। तो कुटिल व्यक्ति स्वयं भी परेशान रहता है और औरों को भी परेशान करता है। सरल व्यक्ति स्वयं भी बहुत आनंदमय रहता है। छोटा बच्चा है, देखो नन्ना संत कहा जाता है, दोनों के पास बैठ के तो शांति मिलती है। बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं? सरल हृदय होते हैं, उनके अंदर कुटिलता नहीं है, कपट नहीं है बेटा, छल नहीं है उनके अंदर, सरल होते हैं, मानो भीतर बाहर से एक होते हैं, उनको सरल कहा जाता है। निश्चल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इनोसेंट होते हैं बच्चे। आज शादी शुरू दो बच्चे, पिछले सप्ताह काफी सारे दृष्टांत सरलता पर सुनाए गए थे, आज आगे जारी रखते हैं। दो बच्चे पड़ोसी हैं, आज बाहर खेलते खेलते आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे की मार पिटाई की। दोनों बच्चों ने जाके अपने अपने माता पिता को शिकायत की, दोनों माता पिता आपस में लड़ने लग गए, दोनों के पेरेंट्स आपस में लड़े, झगड़ा हुआ, वर्षों की मित्रता खत्म हो गई, आपस में बोलचाल बंद, आपस में लेन देन बंद। अगले ही दिन क्या देखते हैं, वो बच्चे जो कल लड़ाई कर रहे थे, जिनके कारण इन पेरेंट्स में, इन पड़ोसियों में आपस में महाभारत का युद्ध हुआ, वो बालकनी में खड़े अपने अपने देख रहे हैं कि वे बच्चे खेल रहे हैं आपस में मिलकर, उनके अंदर किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं है, मानो सब कुछ भूल गए कि कल हमारी लड़ाई हुई थी। ये बच्चों निश्चलता है, ये सरलता है, जो चीज को पकड़ के बैठ जाता है वह सरल नहीं कहा जा सकता। ये बच्चे लड़े हैं कल, लेकिन आज भूल गए हैं कि लड़ाई हुई थी, मिलके आपस में खेल रहे हैं। दोनों के पेरेंट्स ऊपर बालकनी में खड़े हैं, दिख रहे हैं, हम मूर्ख। दोनों पेरेंट्स उतरे आपस में, एक दूसरे से क्षमा मांगी, कहा हमसे तो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये लड़ाई झगड़ा करते हुए भी इकट्ठे रहते हैं और हम इकट्ठे रहते हुए भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कितनी बड़ी सीख दी है इन बच्चों ने अपने अपने पेरेंट्स को, इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने वाला। और कुछ ना सही दे दिया सज्जनों, आप पेरेंट्स बैठे हो, बड़े बैठे हो, मैं भी ऐसा ही हूं बुजुर्ग, इनसे कम से कम और कुछ नहीं तो सरलता तो सीखने की बात है, इनोसेंस तो इनसे सीखने की बात है, बहुत इनोसेंट बच्चे होते हैं। आए साधक चुनो, एक माता पिता आपस में उनका नित्य लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में कला क्लेश मानो खत्म ही नहीं होता, कौन कहे किसका दोष है, दोनों ही होते हैं पर कोई दोष मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को उच्च स्वर से बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, दोनों के अभिमान बोलते हैं, ईगो दोनों के बोलते हैं, और तो बात कुछ भी नहीं है ना, इससे क्लैश ऑफ ईगो और कोई बात नहीं होती। एक 7-8 साल का बच्चा है, उनका पुत्र है, वह आज कहीं बाहर गया हुआ था, सुन के आया है, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल, अच्छा लगा। अतः बाहर से गाता गाता अपने घर में प्रवेश किया है, सुरताल भी अच्छा लगा, बोल भी अच्छी लगे, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। आके सबसे पहले अपने पिता के कमरे में गया है, वहां जाके तो ये बोला, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। पिता को लगा ये मुझे सुना रहा है, कहा क्या मैं ही कड़वा बोल बोलता हूं, जा अपनी मम्मी को सुना। वो बेचारा निचल बच्चा, सरल बच्चा, वहां से उठा, मम्मी के कमरे में चला गया। मम्मी के कमरे में जाके यही धुन लगा दी, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। मुझे क्या सुनाता है, मम्मी कहती है, मुझे क्या सुनाता है, जा अपने पापा को सुना, अपने डैडी को सुना। बेचारा भी चला गया, वहां से भी डांट पड़ी। आके बाहर एक बेंच पर बैठ गया है, बेंच पर बैठ के तो बड़े प्रेम पूर्वक गाना शुरू कर दिया, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल, मुख से राम राम बोल, कड़वा बोल ना बोल। दोनों अपने अपने कक्ष से, कमरों से बाहर निकले हैं, दोनों की हंसी निकल गई है। दोनों बच्चे के पास आए हैं, बच्चे सरल बच्चे, दोनों माता पिता, माता इधर से निकली, पिता इधर से निकले, दोनों पुत्र के पास आए हैं। पुत्र कहता है, मम्मी पापा अब क्या शिकायत है, यहां भी ना बोलूं। इतनी सरलता की बात सुन के माता पिता के दिल पिघले, बच्चे को गले लगाया। ये बच्चा बेटा सरलता उसकी, मानो परमात्मा उसके अंदर बोल रहा है। बच्चों यदि बच्चे सरल हैं तो परमात्मा भी बहुत सरल है, इसलिए परमात्मा को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी कोई सरल है वह बहुत अच्छा लगता है, ये जरूरी नहीं कि बच्चे ही सरल हों। जिस किसी पर परमेश्वर की कृपा, जो बड़ा भी सरल है तो वह भी परमात्मा को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? परमात्मा के अपने स्वभाव में बच्चियों सरलता ही है, कुटिल नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सीधा है। अतएव उसे सीधे सरल लोग, बच्चे हो या बड़े, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। इसलिए बच्चे लोगों आप लोग बहुत पसंद हो, खासकर जो सरल हो, जो शरारती हो गए, कुटिल हो गए, वह इतने पसंद नहीं रहते हैं। पर अच्छे बच्चे, जो सरल बच्चे हैं, वह माता पिता को भी पसंद और परमात्मा को भी पसंद, बेटा अध्यापकों को भी पसंद वह बच्चे। आज इस बच्चे की सरलता ने दोनों माता पिता के अंदर जो कटुता थी वह खत्म कर दी, दोनों बहुत प्रेम पूर्वक रहने लग गए। देखिए सोचो, ये तो सामान्य बातें हो गई, बात तो हमें अध्यात्म की करनी है। सरलता किस प्रकार से हमारी सहायता करती है प्रभु प्राप्ति में, द अल्टीमेट बात तो यही होती है। आप सरल हो, लोग आपको बुद्धू कहते हैं, लोग आपको कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन परमात्मा क्या कहता है देखने की तो ये बात है। परमात्मा आपकी बहुत इज्जत करता है, जो सरल है, जो कपटी नहीं है, जो छली नहीं है, जो दम्भी नहीं है, परमात्मा उसकी बहुत इज्जत करता है, बहुत सम्मान देता है, मानो उसके पीछे पीछे घूमता है। पिछले रविवार भी आपसे चर्चा की थी, सरल के पीछे पीछे परमात्मा घूमता है और कपटी शरारती से अपना पल्लू छुड़ाता है, उसको अपना पल्लू पकड़ने नहीं देता, गंदा है, भीतर से कुछ है, बाहर से कुछ है, उसी को बेटा कुटिल कहा जाता है। जो सरल है वो भीतर से भी वही होगा जो बाहर से है, मान भीतर बाहर से एक, उसे सरल कहा जाता है। ऐसे लोग परमात्मा को बहुत पसंद है। आज देवियों सज्जनों, एक ऐसे ही सरल की बात शुरू करते हैं। बालक है, आज बहुत बच्चे बैठे हैं, अतएव बालक की ही बात करते हैं। नेपाल की बात है, जनकपुर की बात है, एक ब्राह्मणी विधवा का पुत्र है, प्रयागदत्त इसका नाम है। छोटी आयु, पिता को देखा भी नहीं होगा, मां से कुछ न कुछ थोड़ी बातचीत पूछता रहता है। आज पूछा, मां मेरी कोई बहन भाई कोई नहीं, सबके बहन भाई हैं। मैं बाहर निकलता हूं तो मिलते हैं, किसी बहन होती है, किसका को भाई होता है। क्या मेरा बहन भाई कोई नहीं? मां कहती है, बेटा भाई तो तेरा कोई नहीं, बहन है। कौन है? कहा जानकी। मां सीता के लिए कहा, तेरी बहन बड़ी बहन जीजी जानकी है। कहा है? मैंने आज तक उसे देखा नहीं। बेटा अयोध्या के चक्रवर्ती राजा राम से ब्याही हुई है, मुझे उससे मिलना है। नन्ना बच्चा है, मन में अपनी बहन को मिलने का ये बेटा सरलता है। चाव उठा कि मैं अपनी बड़ी बहन को मिलना चाहता हूं, जैसा एक स्वभावता होना चाहिए बच्चे को। मां ने कहा, बेटा अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा तो फिर मैं तुम्हें अयोध्या भेज दूंगी। बड़ा तो क्या होना था, लेकिन उसके अंदर से एक अर्ज, एक उतावलापन, एक लालसा अंदर से बहुत ज्यादा। साल दो साल की मुश्किल से बीत थे होंगे, कितना बड़ा हो गया होगा बेटा, थोड़ा सा और बड़ा हुआ। कहा मां, जीजी को देख के बिना रहा नहीं जाता, मुझे जीजी से मिलना है। अपना नगर मुझे अयोध्या जाना है। मां भक्तनी थी, अतएव अपने पुत्र की बेटा पीड़ा को जान सकी, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को समझ सकी। बहन भाई के लिए आदमी किस प्रकार से तड़पता है, और जहां बहन अभी पता नहीं है कि वह जगजननी है, अभी उसे कोई पता नहीं है कि ये मां जगदम्बा है, मां है जो बहन समझ रहा है। अभी तो अपनी बहन को मिलने के लिए आतुर है। मां ने कहा, बेटा खाली हाथ नहीं जाना, देखो कैसी शिक्षाएं माताएं दिया करती थी, खाली हाथ बहन के घर नहीं जाना, घर में कुछ है नहीं, अतएव कुछ आटा इत्यादि बाहर से लेके तो उसके बेटा आटे के लड्डू बना दिए हैं, मोदक कहते हैं, मोदक बना दिए हैं, लड्डू चार छह आठ जितने भी बनते थे बना दिए। कहा, बेटा ये ले जा, ये अपनी चीची को जाके देना, कहना तेरी मां ने भेजे। संबंध देखो, जहां संबंध होता है वही प्रीति हुआ करती है। कैसा संबंध, ना उसने कभी जानकी को देखा है, ना इसने कभी देखा है, लेकिन अंदर से कुछ अर्ज तरफ इस प्रकार की है, कहना तेरी मां ने भेजे हैं लड्डू तेरे खाने के लिए, मैं सत्तू देती हूं, तू रास्ते में सत्तू खा लेना, ठीक है, उन लड्डुओं को हाथ नहीं लगाना। मानो सत्तू देती है, कह रही है उन लड्डुओं को हाथ नहीं, वह तेरी जीजी के लिए है, जीजा के लिए है, वह तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए सत्तू मैं पोटली में बांध के दे रही हूं। कई दिनों के बाद चलता चलता प्रयागदत्त अयोध्या पहुंचा है। कोई गाड़ी से नहीं गया, कोई बस से नहीं गया, इतने पैसे ही नहीं थे, अतएव पैदल चल के गया है। परमात्मा इन सब बातों की बहुत कदर करता है। कैसे कोई आया है, नंगे पांव चल के आया है, पांव में जूते पहन के आया है, कार में आया है, हवाई जहाज में आया है। परमात्मा इन चीजों को बहुत वैल्यू देता है, इन चीजों का बहुत महत्व मानता है बच्चियों। अतएव पैदल गया है, कुछ दिनों के बाद अयोध्या पहुंचा है। पागलों की तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है। मेरी चीची है जानकी, यहां रहती है। चक्रवर्ती राजा राम जो उस मां से सुना था, चक्रवर्ती राजा राम से ब्याही हुई है, वे मेरी जीजी है, वे मेरी बड़ी बहन है, मुझे उससे मिलना है। जो भी कोई बच्चों सुनता है वह हंसता है, ये कहां से पागल आ गया है, ये कहां से मिलने वाला आ गया है। जैसे आप लोग भी कोई अनजान गांव में आ जाता है तो आप लोग भी हंसी मजाक करते हो, ठट्ठा करते हो, ऐसे ही उसका हंसी मजाक हो रहा है। कोई बताते नहीं। एक दिन व्यतीत हुआ, दो दिन व्यतीत हुए, कुछ दिन न कुछ खाने को मन करता है, न न सोने को मन करता है, न कुछ पीता ही है बेचारा। आज हार के तो एक टीले पर बैठ गया है, जैसे ये छोटा सा पहाड़ का टीला हो, ऐसा कोई पत्थर बड़ा उसके ऊपर बैठ गया है, इंतजार कर रहा है कहां जाऊंगा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले मैं घूमूंगा, मुझे जी जी का कोई पता ही नहीं बताता। और माँ ने कहा है कि वो अयोध्या में ही रहती है, मैं अब कहां जाऊं। हार के उस टीले पर बैठ गया है, क्या देखता है बच्चों, एक हाथी आया है। उस हाथी पर दो सवार है, नीचे उतरे। नीचे उतर के कहती है मां जानकी, बेटा मां ने क्या भेजा है मेरे लिए। मां को कंफर्म करने के लिए मां जानकी कह रही है, भैया मां ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो प्रसन्न हुआ कि मुझे मेरी जीजी मिल गए हैं। वो जो लड्डू थे वह सारे के सारे उन्हें दे दिए। दो लड्डू भगवान राम ने रखे, मां सीता ने भगवान राम ने दो लड्डू रखे, कहा बाकी तुम ले जाओ, मां को कहना तेरी पुत्री बिल्कुल ठीक है। धन्य हो गई मां जिसकी पुत्री जयंती बन गई, धन्य अधि धन्य हो गया वह जिसको जानकी ने अपना भाई स्वीकार कर लिया। बेटा जाके मां को कहना जानकी बिल्कुल ठीक है, जा अब ये लड्डू साथ ले जा, कहना मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी किसी प्रकार की चिंता अब नहीं करनी। उनके जाते ही प्रयागदत्त बेटा बेहोश हो गया। परमेश्वर के दर्शन हुए हैं, किसी सामान्य व्यक्ति के दर्शन नहीं हुए, परमेश्वर के दर्शन हुए हैं। बिना तैयारी के कोई सहन नहीं कर सकता, उनका इतना तेज होता है, इतना प्रभाव हुआ करता है, इसलिए साधना करवाई जाती है। आप मां की उपासना करते हो, साधना अगर नहीं है, आपके सामने शिरावाली मां या डिम्बा मां आपके सामने प्रकट हो जाए, यदि आपके अंदर साधना का बल नहीं है तो आप घबरा जाओगे, डर जाओगे, ये इतना बड़ा शरीर, इतना क्यों शरीर कहां से आ गया है, ये शेर कहां से आ गया है, घबरा जाओगे, बुरा हाल होगा आपका। अतएव प्रयागदत्त बेहोश हो गया है। थोड़ी देर के बाद होशाइश, एक संत उससे गुजर रहे थे, परमात्मा है सब कुछ करवाने वाला, वह सारे संबंध जोड़ता जाता है, ले गया अपने पास, अपनी कुटिया पे प्रयागदत्त को रखा। होशाई सब कुछ सुनाया, क्या देखता है, रात्रि का समय है, दो देवियां आई हैं, अपने हाथ में सोने का थाल लिया हुआ है, पूरा भोजन से भरा हुआ है, ऊपर कमल के पत्ते ही रखे हुए हैं। संत समझ गए ये बहन ने अपने भाई का स्वागत किया है, अपने भाई के लिए भोजन भेजा है, अपने नन्हे भाई के लिए भोजन भेजा है, बहन का बड़ी बहन का कर्तव्य निभाया है। अतएव दोनों ने मिलकर भोजन किया। भोजन करने के बाद खाली हो गया थाल, प्रयाग को कहा तुम वापस नेपाल जा रहे हो, ये सोने के थाल है, दिव्य थाल है। दिव्य भोजन किया दोनों ने, सामान्य भोजन नहीं था, दिव्य भोजन शब्द है, दिव्य भोजन दोनों ने किया। प्रयाग कहता है नहीं बाबा, यदि बहन के घर की चीज मैं अपनी मां के पास ले जाऊंगी, मां मुझे घर से निकाल देगी। हमारा रिवाज है हम लड़की के घर का कुछ स्वीकार नहीं करते, मां उसे घर से निकाल देगी, मेरे साथ रुष्ट हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। सोने के थाल छोड़ के प्रयागदत्त वापस अपनी मां के पास चला गया है, जाके सारा हाल सुना मां गदगद। मां जन्मे तो पुत्र जन्मे, भक्त जन्मे, या शूरवीर जन्मे, नहीं तो बांझ रह जाए, क्यों अपना नूर गवा रही फिजूल में। देवियों पुत्र जन्मो तो कोई भरत पुत्र जन्मना या शूरवीर जन्मना, जो युद्ध करने वाला बहादुर हो, नहीं तो
बिना पैदा किए ही रहना, फिजूल में अपना नूर क्यों गंवाती हो। संत महात्मा ऐसा कहते हैं, गद गद हो गई है माँ, बिना पुत्र जानकी के एवं प्रभु राम के दर्शन करके आया। एक साल के बाद मां मर गई, किसी को प्रयागराज पर तरस आया, विवाह की प्रपोजल आई, थोड़ा बड़ा हो गया है, विवाह की प्रपोजल आई। माता पिता ने कहा, ऐसे ने सोचा इसको अपना घर जमाई बना लेंगे, लेकिन उसके मन में तो जीजी और जीजा बसे हुए थे, अतएव बिना सब कुछ किए जल गया है। जाके फिर अयोध्या पहुंचा है, अयोध्या पहुंच के फिर खोज शुरू की है, फिर दिल्ली पर बैठा है, लेकिन आज कोई नहीं आ रहा। एक अपने तरीके की मस्ती है प्रयाग तट पर। एक संत महात्मा मिले, उनसे राम नाम की दीक्षा ली, राम राम जपना शुरू किया, खूब राम राम जपा, मस्ती के दिन व्यतीत करने शुरू कर दिए। आज पता लगा सीता और राम लक्ष्मण जी के साथ जंगल में चले गए हुए हैं, कोसने लग गए जीजा को। जीजा चंट सरलता, सरलता में आदमी कुछ भी कहे कोई बुरा नहीं मानता। जीजा कौन? भगवान राम। ये जीजा बड़ा चंट है, मेरी बहन बड़ी सीधी साधी, देखो महल छुड़वा के उसे जंगल में ले गया है। ये जीजा जैसा कहता है वैसी मान जाती है। अतएव तीन पलंग खरीदे, कुछ मजदूरी की, मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, तीन पलंग खरीदे, तीन गद्दे खरीदे, तीन जोड़ी जूते खरीदे, उठाते तीनों पलंग, तीनों गद्दे, तीन जोड़ी जूते, तीन लोग गए हुए हैं ना, सिर पर रख के चित्रकूट की यात्रा। चित्रकूट चला गया है प्रयाग तक, दीक्षा के बाद नाम पड़ गया प्रयागदास, भक्त प्रयागदास वहां चला गया है। जाके एक जगह पर तीनों बिस्तर लगा दिए हैं, बेड उसके ऊपर गद्दा, तीन जोड़ी जूते एक एक बेड पर रख दिए हैं। नीचे ढूंढने चला गया है, कहां खो गए हो जीजा, तुम्हें पता लग गया होगा इस साला फिर आ गया है। कोई शर्म नहीं साला कहने में, कुछ नहीं, तुझे पता लग गया होगा साला फिर आ गया है, इसलिए कहीं छिप गए हो। घूम घाम के जंगल में चित्रकूट में आके दिखता है, देखो सरलता की कीमत, बच्चे लोगों बच्चियों सुन रही हो ना, सरलता की कीमत देखो, अब मेरे रोने से क्या फायदा। सरलता जो बचपन में थी वह तो खो गई, खो दी उसे, अब रोने से पश्चाताप करने से क्या फायदा। अतः बच्चों बच्चियों आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो कोई आप में सरल है कभी अपनी सरलता को खोना ना, गंवाना ना, ये बड़ी अनमोल चीज सरल बन के रहना। आज क्या देखता है प्रयागदास आके, एक एक बेड पर, एक पर राम बैठे हैं, एक पर जानकी बैठी है, एक पर लक्ष्मण बैठे। प्रयागदास आया, अपने हाथों से प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं, अपने हाथों से सबके पांव में जूती पहनाई है। वाह प्रयागदास, कहां इनके चरण छूने की कभी किसी को अवसर मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रयागदास परमात्मा के चरण छू रहा है, जगजननी के चरण छू रहा है, लक्ष्मण जी के चरण छू रहा है, अपने हाथों से जूता डलवा रहा है। जहां कहीं रोड़े कंटे खड्डे आए, वहीं वहीं राम को कोसता है, जीजा कितना कठोर, मेरी जीजी कितनी कोमल, क्या हालत हुई होगी जब पैदल चलते होंगे। कहा, जीजा मुझे अपने साथ रखो,
मैं तीनों बिस्तर बेड उठा के सिर पर आपके साथ साथ घूमूंगा। कहा नहीं भैया, जंगल में हम तीनों ही रहते हैं, छिप के रहते हैं, हम कभी बेड पर नहीं बैठते। ये तो तेरी प्रसन्नता के लिए, तू मारा मारा फिरता रहेगा, तुझे प्रसन्न करने के लिए आज बिस्तर पर बैठ गए हैं। वनवास के दिनों में हम बेड पर नहीं बैठते।
तू वापस ले जा, हमें सुख मिलेगा, हमें चैन मिलेगा। बेचारा तीनों बिस्तर उठाए हुए, बेड उठाए हुए सिर वापस अयोध्या लौट रहा है। जहां जहां कहीं फिर कांटे इत्यादि आते, मन ही मन सोचता है ये जीजा ने क्या कर दिया, मेरी जीजी को साथ ले लिया। अभी तक तो जब पेड़ दिखाई देते हैं, लताएं दिखाई देती हैं, फूल दिखाई देते हैं, तब तक तो ठीक, किसी दिन शेर दिखाई दे गया, भेड़िया दिखाई दे गया तो पता लगेगा मुझे भी साथ नहीं रखा। देखो सरलता है प्रयागदास की, अरे तू क्या कर लेगा साथ रह के, लेकिन सरलता है उसकी, मुझे भी साथ नहीं रहने दिया। मुझे साथ रहने दिया होता तो मैं कुछ काम आता।
एक अद्भुत सी मस्ती है प्रयागदास पर, क्यों ना हो, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा का साला साथ, छोटा मोटा संबंध परमात्मा का साला, जब जननी का भाई। बच्चियों, जो जगजननी का भाई होगा यह सारे जगत का मामा हो गया ना। अतएव प्रयागदास को जगत मामा कहा जाता है। प्रयागदास कौन? जगत मामा। भक्त प्रयागदास जगत मामा, जगजननी का भाई, हमारी माँ का भाई, हमारा मामा, हम सबका मामा बन गया भक्त प्रयागदास बेटा। किस कारण? अपनी सरलता के कारण। पा गया जिसके लिए संत महात्मा अपनी जिंदगियां गवा देते हैं, जंगलों में घूम घूम के, पहाड़ों में घूम घूम के, वह अपनी सरलता के कारण, निश्चलता के कारण, निष्कपटता के कारण, वह सब कुछ अनायास पा गया। तो आज का जीवन चर्चा यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अगले रविवार को भी बच्चों यही सरलता पर चर्चा जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। हार्दिक धन्यवाद बच्चों, आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। पूज्य शास्त्री जी, आप जी का हार्दिक धन्यवाद। आप इन सब बच्चों को लेके आए हैं, हृदय से धन्यवादी हूँ। आपका बहुत कृपा करी है, बहुत उपकार किया है आप जी ने। धन्यवाद सबका, कोटि-कोटि प्रणाम।